पीडित छात्र नमस्कार। अपन का बिंदु चल रहा था शब्द शक्ति, और शब्द शक्ति में आपने उसकी परिभाषा, उसके भेद, जिसमें परिभाषा में आपने यही जाना कि शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य या फल को शब्द शक्ति कहते हैं। शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें वाचक, लक्षक और व्यंजक, और शब्द और अर्थ की समझ के अनुसार शब्द शक्ति है वो तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिसमें अभिधा और लक्षणा के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। अभिधा शब्द शक्ति यानी शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ शब्द के मुख्यार्थ का बोध हो या सीधा साधा अर्थ निकले तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। फिर अपने बात की थी लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ पर मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा होती है शब्द से गुण क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे आपने उदाहरण में देखा कि मोहन गधा है, तो मोहन गधा है यानी मोहन कोई जानवर नहीं है, लेकिन मोहन में गधे जैसे लक्षण है। या सीता निरी गाय है, अब सीता कोई गाय नहीं है, जानवर नहीं है, बल्कि सीता सुशील शालीन महिला है। अगला जो तीसरी शब्द शक्ति है वो है वंदना शब्द शक्ति। तो वंदना शब्द शक्ति, वंदना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। अर्थात जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो, तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति है वो वंदना शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात जहाँ शब्द का न तो वाच्यार्थ निकले न लक्ष्यार्थ निकले, बल्कि उसका व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर वंदना शब्द शक्ति होती है। अर्थात जब किसी शब्द की अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से हो तो वहाँ वंदना शब्द शक्ति होती है। जैसे संध्या हो, अब संध्या हो गई, इसका इस वाक्य का अनेक अर्थ है वो निकल सकते हैं। जैसे पुजारी ने सोचा कि संध्या हो गई, पूजा करने का समय हो गया। खिलाड़ियों ने सोचा कि संध्या हो गई, अर्थात खेल समाप्त करने का समय हो गया। ग्वाले ने सोचा संध्या हो गई, इसका मतलब गायें घर लेने का समय हो गया। वंदना शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं, शाब्दी वंदना और आर्थिक वंदना। जब वंदना शब्द में हो और वंदना शब्द को बदल देने से उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है तो वहाँ पर शाब्दी वंदना होती है, और आर्थिक वंदना में शब्द बदल देने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वहाँ आर्थिक वंदना होती है। वंदना शब्द शक्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न शने गंभीर को घटी ए वृक्ष भानु जा वे हलदर की भी। तो इसमें शराब्दी बनना है। राधा कृष्ण की ये जोड़ी चिरंजीवी हो, परस्पर गहरा प्रेम क्यों न जुड़े, दोनों में कौन घटकर है, अर्थात दोनों एक से बढ़कर है। ये वृक्ष भानुजा है तो वो वल्धर के भाई है, ये वाचार्थ है। पर वृक्ष भानुजा और हल्धर शब्दों के अनेकार्थ होने के कारण एक दूसरा अर्थ भी ध्वनित होता है, और ये अर्थ ये है कि ये वृक्ष की अनुजा यानी पहल की छोटी बहन है तो वो हल्धर के भाई है। ये विनोदात्मक दूसरा अर्थ व्यंग्यात्मक है। यहाँ शाब्दी वंदना है क्योंकि वृक्ष भानुजा और हल्धर के स्थान पर वृक्ष भानुसूता या बलराम शब्द रख दिए जाए तो उसका व्यंग्यार्थ है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वाक्य में वंदना सब सकती है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वदा सुधर गया। अब इस वाक्य में वाक्य का वाचार्थ होगा लड़का सर्वदा सुधर गया, यानी लड़का हमेशा से सुधर गया। लक्ष्यार्थ लड़का सर्वदा बिगड़ गया, यानी लड़का पूरी तरह से गया। व्यंग्यार्थ होगा अध्यापक सर्वदा अयोग्य है, अर्थात अध्यापक को पढ़ाना नहीं आता। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण, रजनीगंधा खिल गई। तो इस वाक्य में वाच्यार्थ होगा रजनीगंधा के पौधे में फूल खिल गई, और व्यंग्यार्थ आधी रात हो गई क्योंकि रजनीगंधा आधी रात पूरी तरह से खिलती है। और इसका दूसरा व्यंग्यार्थ भी निकलता है कि रजनीगंधा खिल गई अर्थात अर्धरात्रि हो गई है, इसलिए भाग निकलने का समय हो गया है। तो इस प्रकार ये आपका व्याकरणिक बिंदु सब शक्ति है होता है समाप्त।